उपाय छोटा काम बड़ा।
नमस्कार मित्रों, आवाज के साप्ताहिक कार्यक्रम सुनो कहानी में आज हम आपका परिचय करा रहे हैं बिलासपुर की संज्ञा टंडन से।
कविता, कहानी, बाल रचना, गीत संगीत सुनने के लिए लॉग ऑन करें hindyugma.com।
ये कहानी स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक राजयोग से ली गई है। एक राजा थे बहुत अत्याचारी, वे प्रजा पर बहुत अत्याचार किया करते थे। उन्हें अपने ही आनंद, अपने ही सुख और सुविधा का ध्यान रहता था। प्रजा की ओर वे नजर फेर कर भी नहीं देखते थे। भारतवर्ष में अनेक बहुत भले राजा हो गुजरे हैं, लोग आज भी उनको याद करते हैं और उन्हें देवता मानकर पूजते हैं। वे प्रजा को अपने बेटे के समान प्यार करते थे। पिता जिस प्रकार अपने बेटे के संबंध में सोचता है, उसकी शिक्षा और सुख सुविधा की व्यवस्था करता है, राजा भी ठीक उसी प्रकार प्रजा के लिए करते थे। उन राजाओं में से कई राजा तो अपने आप को सेवक समझा करते थे। विशाल मानव समाज की सेवा का भार भगवान ने उनके कंधे पर डाल रखा था। फिर ये भी याद रहे, भगवान समस्त मनुष्यों में रमे हुए हैं, इसलिए प्रजा की सेवा करना भगवान की सेवा करना है। कई राजा तो यहाँ तक भी समझते थे कि राज्य, राजधानी, राजमहल सभी प्रजा के हैं। राजा का कोष भी प्रजा ही का धन भंडार है। इसकी रक्षा राजा प्रजा के सेवक के रूप में करते थे और प्रजा की उन्नति के लिए खर्च करते थे। अपने सुख और आनंद के लिए वे राजकोष से एक पैसा भी खर्च नहीं किया करते थे। राज भंडार से उतना ही धन लिया करते थे जो उनकी रोटी और कपड़े के लिए आवश्यक होता था। राजा और रानी सभी बड़े सद्भाव या सादे तरीके से साधारण लोगों की भांति रहते थे। परंतु जिन राजा की चर्चा यहाँ की जा रही है, वे उपर्युक्त राजाओं से सर्वथा विपरीत रीति से चलते थे। मनुष्य जिस तरह दूध पीने के लिए एवं खेतीबाड़ी करने के लिए पशु पालता है, तथा घर का पहरा देने या रखवाली करने के लिए कुत्ता, चूहों के मारने के लिए बिल्ली पालता है, ठीक उसी प्रकार वे राजा भी केवल अपने लिए ही प्रजा का पालन करते थे। रुपया पैसा अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर खर्च कर दिया करते थे। जब देखते कि राजकोष में कमी आ रही है, तो प्रजा से अन्याय करके बलपूर्वक रुपया पैसा मानो छीन लेते थे। जिस किसी का चाहते सिर काट कर रख देते, इसको उसको बंदी बनाकर रखते या पहाड़ पर्वत में ले जाकर बाघ के सामने छोड़ देते और दूर से उसके मरने का तमाशा देखते। वे किसी प्रकार के विचार और न्याय की आवश्यकता नहीं समझते थे। राजा के अत्याचारों से देश के लोग दिनों दिन रुष्ट होने लगे, परंतु मुंह से कुछ कहने का साहस कोई न कर पाता था। कारण, सब लोग जानते थे कि जिस किसी ने राजा के सामने जबान खोली नहीं कि राजा के हाथों उस पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। हो सकता है उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए और फल कुछ न हो। इसलिए देश के लोग चुपचाप समस्त अत्याचार अन्याय सहन कर लेते थे। मनुष्यों के अंदर महाशक्ति के रूप में भगवान निवास करते हैं। अत्याचार, अन्याय और अविचार जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब मनुष्य के भीतर के देवता को जाकर झंझोड़ता है। जब मनुष्य के भीतर वो महाशक्ति जाग उठती है, सोया हुआ सांप जब फन उठाकर खड़ा हो जाता है, तो उसको किसी प्रकार का भय दबाकर रख नहीं सकता। अकस्मात राज्य में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। राजा के अत्याचार के कारण क्रमशः राज्य के दो एक स्थानों से विद्रोह का तांडव शुरू हो गया। राजा अपनी सारी शक्ति लगाकर विद्रोह का दमन करने लगे। दोषी निर्दोष का विचार न करके अनेक लोगों के सिर काट दिए गए। अनेक लोगों को देश से भगा दिया गया। बाकी के ग्रामीण बच्चों, बूढ़े बूढ़ियों सबको जी भर कर मारा पीटा गया। इसके बाद आनंद भरे मन से घर लौटकर सोचने लगे कि उन्होंने बहुत बड़ी बहादुरी का काम कर डाला है और अब कहीं भी विद्रोह नहीं होगा। नदी का पानी जब पहाड़ से उतरकर समुद्र की ओर दौड़ निकलता है, तो कोई भी बाधा उसको बांध कर नहीं रख सकती। विद्रोह का प्रवाह वास्तव में रोका न जा सका। अत्याचार और दमन चक्र के विद्रोह को जितना दबाना चाहा, उतना ही वो बढ़ गया। देखते ही देखते देश के बूढ़े बच्चों, नौजवानों, महिलाओं और पुरुषों में विद्रोह की लपटें फैल गईं। देश के बुद्धिमान बुजुर्ग सभी महाचिंता में डूब गए, किंतु राजा को समझाने और रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बहुत सोच विचार के पश्चात उन्होंने निश्चय किया और उनमें से कुछ लोगों ने जाकर मंत्री के साथ भेंट की। उन्होंने मंत्री महोदय से इस विषय में विचार विमर्श किया कि देश में किस प्रकार से शांति स्थापित की जा सकती है। राजा जितने बुरे थे, मंत्री उतने ही अच्छे थे। वे देश के लोगों को जी जान से प्यार करते थे। वे लोगों के दुखों को जानते थे, किंतु उन्हें ये उपाय नहीं सूझ पाता था कि प्रजा की रक्षा कैसे की जाए। राजा के स्वभाव को वे बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने अंत में साहस करके एक दिन राजा से कहा, महाराज, यदि दास का अपराध न समझा जाए तो आपके सामने एक दो बातें कहने की आज्ञा चाहूं। राजा ने कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो? मंत्री ने कहा, महाराज, आप इस राज्य के मालिक हैं, आप अपनी प्रजा के माँ बाप हैं, आप जो करेंगे वही होगा। आपने प्रजा के लिखने पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं की, आपने ऐसी चेष्टा नहीं की जिससे राज्य में धीरे धीरे धन बल जन बल की वृद्धि प्राप्त होती। अब सूचना मिली है कि आजकल कई स्थानों पर प्रजा आपके विरुद्ध उठ खड़ी हुई है। मंत्री की बात सुनकर राजा मन ही मन बहुत रुष्ट हुए। बड़े गंभीर स्वर में उन्होंने उत्तर दिया, मंत्री, आज जो बात तुमने मुंह से निकाली है इसे मैं दोबारा नहीं सुनना चाहता। याद रखो, प्रजा के विद्रोह से डर जाने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूँ। दो दिन प्रतीक्षा करो, फिर देखना, राज्य के घर घर में मैंने यदि आग न लगा दी, मनुष्य के मांस को यदि कौओं कुत्तों गिद्धों और गीदड़ों का महाभोज न किया, राज्य में रक्त की नदियां ना बहा दी, तो मेरा नाम बदल कर रख देना। यदि तुम्हारी जगह कोई और मंत्री होता तो मेरी प्यासी तलवार अभी उसका खून पीकर शांति प्राप्त करती। मंत्री ने राजा के दोनों पांवों को पकड़कर निवेदन किया, मैंने अपने प्राणों की चिंता नहीं की महाराज, दुखी प्रजा के आकुल क्रंदन ने मेरे हृदय को वेदना व्यथा से भर दिया है। आपके पांव पकड़ता हूँ महाराज, अपनी प्रजा की ओर आंख उठाकर देखिए, उनके पेट में रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, मुंह पर मुस्कुराहट नहीं है और मन में नहीं है शांति का लेश मात्र भी। आप उन पर अत्याचार करके उनके दुखों के बोझ को और भी भारी न कीजिए। उनकी आंखों के आंसू हमारे सिर पर अभिशाप का वज्र बनकर टूट पड़ेंगे। अभी समय है, आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो ठीक नहीं है, इस रास्ते को छोड़ दीजिए। कहते कहते मंत्री की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, परंतु राजा के हृदय को कोई बात स्पर्श न कर सकी। अत्यंत क्रोधावेश में राजा बोल उठे, उपदेश की सीमा होती है मंत्री, परंतु तुमने सीमा को कुछ समझा ही नहीं। मैं तो हैरान हूँ कि तुम्हें मेरे पास आकर ये बातें कहने का साहस कैसे हुआ। समझ लो मंत्री, धर्म कथा कविता और राजनीति एक चीज नहीं है। यदि धर्म करने को मन चाहता है तो कविता से मनमग्न हो उठता है, तो मेरे काम से छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? अपना कर्तव्य मैं खूब जानता हूँ, तुम्हें मैं फिर सावधान किए देता हूँ कि भविष्य में तुम्हारे मुंह से ऐसे धर्म उपदेश पुनः नहीं सुनना चाहता। अत्यंत दुखी होकर मंत्री घर लौट आए, मन ही मन कहने लगे, भगवान, राजा को सुमति दीजिए, राजा की रक्षा कीजिए। एक दिन राज्य के कई बालक मंत्री से भेंट करने के लिए मंत्री के घर उपस्थित हुए। मंत्री ने बड़े आदर के साथ उनको बिठाया और बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनी। उन्होंने एक एक करके राजा के अत्याचारों की कहानी, प्रजा के दुख की बातें सुनानी आरंभ की। मंत्री की आंखों से दुख के कारण आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, देश की बात सोचते सोचते मेरा आहार छूट गया, नींद भाग गई, परंतु सोचते सोचते किसी कूल किनारे नहीं पहुंच सका। आप देश के गणमान्य लोग हैं, आप स्वयं ही सोचिए, हम सबके प्रयत्नों से शायद ऐसा समाधान प्राप्त हो सके जिससे राजा प्रजा और राज्य सबका मंगल होगा। मंत्री की बातों और दयामय व्यवहार से उन लोगों के हृदय तृप्त हुए। देश की बात सोचते सोचते वे लोग अपने अपने घर लौट आए। अत्याचारी का एक स्वभाव ये है कि वो कभी किसी पर विश्वास नहीं करता, अपने स्त्री पुत्र पर भी नहीं। राजा के गुप्तचर भेष बदल कर घूमते रहते थे और जाकर सारी खबरें राजा को देते थे। वे बाजारों मैदानों रास्ते घाटों पर प्रजा के घर घर में छद्म वेश में घुमा करते थे। मंत्री के घर अनेक लोगों के आकर परामर्श करने की सूचना भी राजा के पास आने में देर न लगी। राजा ने मंत्री को पकड़कर एक दुर्ग के भीतर कैद कर दिया। दुर्ग के सामने के ऊपर के छोटे से कमरे में मंत्री नजरबंद थे, वहां कोई जा नहीं सकता था। दुर्ग के द्वार पर दिन रात सहियों का पहरा रहता था। धीरे धीरे सारी खबर मंत्री की स्त्री के पास पहुंच गई। वो मंत्री के समान बहुत ही अच्छी और बुद्धिमती थी। रोई नहीं, व्याकुल भी ना हुई। स्थिर भाव से सोचने लगी कि किस प्रकार मंत्री को छुड़ाया जा सकता है। संध्या के बाद मंत्री की स्त्री रोज दुर्ग के पीछे की ओर जाकर बैठ जाया करती थी। वो चारों ओर नजरें दौड़ाकर सोचा करती कि मंत्री का उद्धार कैसे हो। मंत्री के कमरे से दुर्ग की दीवार सीधी एकदम नीचे तक चली गई थी। नीचे पहाड़ और पत्थर का स्तूप था। ऊपर से कूदने पर मनुष्य के शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर उसका मर जाना निश्चित था। अपने कमरे से मंत्री ने देखा कि रोज संध्या के समय कोई महिला दुर्ग के नीचे आकर बैठ जाती है। मंत्री ने अपनी स्त्री को पहचान लिया। दुर्ग के ऊपर से मंत्री सोचता और नीचे बैठी सोचती थी उसकी स्त्री। कैद से भाग जाने का कोई रास्ता नहीं सूझता था, परंतु मनुष्य के सामने कोई काम असाध्य नहीं है। जिसको भगवान ने बुद्धि दी है और धैर्य दिया है, उसके सामने असाध्य कार्य भी साध्य हो जाता है। बहुत सोचने के बाद मंत्री ने पलायन का उपाय ढूंढ निकाला। दूसरे दिन मंत्री की स्त्री दुर्ग के पीछे आकर जब बैठी, उसी समय ऊपर से एक पत्ता आकर नीचे गिरा। पत्ते के साथ एक छोटा सा पत्थर बंधा हुआ था। पत्ते पर लिखा था, कल संध्या के समय जब आओ तो एक गोबर कीड़ा, थोड़ा सा शहद, रेशम का बहुत लंबा सूत, एक गुच्छी पक्के सूत की, एक गुच्छी बारीक रस्सी की, एक गुच्छी रस्सी की जो न अधिक मोटी हो न बारीक, और एक गुच्छी मोटे रस्से की साथ ले आना। पत्ते को आंचल में छिपाकर मंत्री की स्त्री घर लौट आई। इधर मंत्री दुर्ग में बैठे बैठे सोचते रहे, पलायन करूं या ना करूं? दुर्ग में रहने से भला लाभ ही क्या है? भाग जाने से शायद हतभागे देश का कुछ भला किया जा सके। बहुत सोच विचार के पश्चात मंत्री ने पलायन करने का निश्चय कर ही लिया। अपने प्राणों के लिए भाग जाने वाला व्यक्ति वो मंत्री नहीं था। देश के दुख ही से उसका हृदय व्याकुल और चंचल हो उठता था। दूसरे दिन संध्या के बाद मंत्री की स्त्री फिर दिखाई दी। उसी समय ऊपर से कई एक पत्ते मंत्री की स्त्री के आगे आ गिरे। उन पर लिखा था, बड़ी रस्सी का एक सिरा मध्य वन की रस्सी के सिरे के साथ बांधो, इस रस्सी के दूसरे सिरे के साथ पतली रस्सी, उसके सिरे के साथ पक्का सूत, और इस सूत के दूसरे सिरे के साथ रेशमी सूत बांध दो, रेशमी सूत का दूसरा सिरा गोबर कीड़े की पूंछ के साथ बांध दो, और कीड़े के सिर पर शहद की एक बूंद लगा दो और उसका मुंह मेरी ओर करके छोड़ दो। बहुत ही थोड़े से समय में ये सारा काम मंत्री की स्त्री ने संपन्न कर दिया। गोबर कीड़े ने मधु की गंध पाकर ये समझा कि ये गंध ऊपर से आ रही है। फलता धीरे धीरे गोबर कीड़ा ऊपर चढ़ने लगा। अंत में वो एकदम मंत्री के हाथ के निकट पहुंच गया। मंत्री उसके शरीर से लगे रेशमी सूत को पकड़कर ऊपर की ओर खींचने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे पक्के सूत का सिरा भी उनके हाथ में आ गया। इसके बाद धीरे धीरे बारीक रस्सी, मझोली रस्सी और अंत में मोटी रस्सी मंत्री के हाथ में आ गई। दरवाजे के साथ मोटे रस्से के सिरे को पक्की तरह से उन्होंने बांध दिया। इसके पश्चात धीरे धीरे रस्से के द्वारा बहुत ही आसानी से वे उतर पड़े। स्त्री को लेकर मंत्री जंगल के भीतर भाग गए। चलते चलते उस राज्य को छोड़कर अन्य देश में पहुंच गए। कुछ ही दिनों के पश्चात शत्रु के हाथों राजा मारा गया। सुयोग देखकर मंत्री पुनः अपने देश में लौट आए और राजा के शिशु पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर राज्य का कार्य करना आरंभ कर दिया। मंत्री के गुणों के प्रभाव से राज्य में शांति स्थापित हो गई और प्रजा में हर्ष की लहर दौड़ गई।
कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग, लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग्म, अपनी बात अपनी भाषा में।